ஹரி கிருஷ்ண. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 6 டெக்ஸ்ட் நம்பர் 11 and 12. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணக்கு முக்காவின் சி நிக்கே ஹுயே இன் அத்தியந்த பவித்திர சப்தம் கோ மேரே சாத் சாத் சரண் கர்னே கா பிரயாஸ் கீஜியே. பகவான் கேத்தே ஹே, சுசௌ தீசி பிரதிஷ்டாப்ய ீச்சைலாஜினுஷுத்தரம் தைகாகிரம் மன கிரீத்வாதித்தேந்திரிய உபவிஷ்யாசனேயுஞ்ச்யாத் யோகம் ஆத்மவிசுத்தயே சுசௌ தீசி பிரதிஷ்டாப்ய ஸ்திரமாசனமாத்மனா நாத்யுச்சிதம் நாதி நீசம் சைலாஜினுஷுத்தரம் தத்ரைகாக்ரம் மனஹ க்ருத்வா யதசித்தேந்த்ரிய க்ரிய உபவிஷ்யாஸனே யுஞ்ச்யாத் யோகம் ஆத்மவிசுத்தயே சுசௌ தீசி பிரதிஷ்டாப்ய ஸ்திரமாசனமாத்மனா நாத்யுச்சிதம் நாதி நீசம் சைலாஜனகுஷுத்தரம் தத்ரைகாக்ரம் மனஹ க்ருத்வா யதசித்தேந்த்ரிய உபவிஷ்யாசனேயுஞ்ச்யாத் யோகம் ஆத்மவிசுத்தயே சுசௌ தீசி பிரதிஷ்டாப்ய ஸ்திரமாசனமாத்மனா நாத்யுச்சிதம் நாதி நீசம் சைலாசனகுஷுத்தரம் தத்ரைகாக்ரம் மனஹ க்ருத்வா யதசித்தேந்த்ரிய க்ரிய உபவிஷ்யாஸனே யுஞ்ச்யாத் யோகம் ஆத்மவிசுத்தயே சுசௌ தீசி பிரதிஷ்டாப்ய ஸ்திரமாசனமாத்மனா நாத்யுச்சிதம் நாதி நீசம் சைலாஜினகுஷுத்தரம் தத்ரைகாக்ரம் மனஹ க்ருத்வா யதசித் தேந்திரிய க்ரிய உபவிஷ்யாஸனே யுஞ்ச்யாத் யோகம் ஆத்மவிசுத்தயே. சப்தம் காத் சுசௌ அர்த்தாத் பவித்ர, தேசே மத்தப் பூமி மே பிரதிஷ்டாப்ய ஸ்தாபித் கர்க்கே, ஸ்திரம் அர்த்தாத் திருட் ஆசனம் अर्थात आसन जिसे बैठते हैं ना, आत्मनः स्वयं का यानी कि वो आसन अपना होना चाहिए, न नहीं अति अत्यधिक उच्चतम ऊंचा, न नहीं तो अति मतलब अधिक नीचम यानी निम्न या नीचा, चैलाजन अर्थात मुलायम वस्त्र तथा मृगछाला, कुश तथा कुश का उत्तम अर्थात आवरण, तत्र उस पर एकाग्र एकाग्र मन मन को कृत्वा करके यथाचित मन को वश में करते हुए इंद्रिया क्रिया अर्थात क्रियाएं उपवेश्य बैठकर आसने आसन पर युंज्यात अर्थात अभ्यास करे। योगम आत्मविशुद्धे योग हृदय की आत्मना हृदय की विशुद्ध यानी शुद्धि के लिए जो कार्य कर रहे हो किसके लिए कर रहे शुद्धि के लिए। अनुवाद योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा यह पवित्र स्थान में स्थिर हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग मथुरा वृंदावन ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथा कथित योग समाधियां भले ही धन कमा लें किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग में यानी वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलह नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है कोई दूसरा मार्ग नहीं है कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनो भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साकृजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद गीता मात की जय हो। शताध्याय श्लोक नंबर 11 एंड 12। भगवान हमें योग साधना के विषय में बता रहे हैं कि कैसे योग साधना की जाती है और उसका कारण क्या है, किस तरह से उस लक्ष्य को पहुंचा जाता है, यानी भगवत प्राप्ति या परम सिद्धि जो है वो योग साधना के जरिए की जाती है। तो उसमें क्या करना होता है, कल हमने पढ़ा योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी युञ्जीत सतत, यानी उसको अपनी जो चेतना है और अपना मन है, अपनी इंद्रियां हैं, शरीर मन इंद्रियां आत्मा, ये सब कहाँ पर करनी है, युञ्जीत अर्थात कृष्ण चेतना में केंद्रित करनी है, परमात्मा में भगवान के अंदर, ये परमेश्वर के अंदर ये पूरा अपना शरीर मन आत्मा को स्थित करना है। और उसके बाद और क्या करना है, रहस्य स्थितम, रहस्य मतलब एकांत वाले में, उसको रश वाली जगह पे नहीं बैठाना है, एकाकी यत चित्त आत्मा, जब एकांत स्थान में वो रहेगा तो फिर सावधान होगा, तो फिर क्या होगा कि क्योंकि विषय नहीं होंगे तो फिर निराशीर परिग्रह, फिर विषय होंगे नहीं और प्लस उसको दूसरे भी जितने भी इंद्रिय विषय हैं उनके विषय में सोचना भी नहीं है और ना ही परिग्रह करना है, यानी कि संग्रह कुछ भी नहीं करना, संग्रह कुछ भी नहीं करना है मतलब अपने, अब जाएगा जब एकांत स्थान में तो अपने साथ बहुत सारी सामान लेकर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग जाते हैं कभी कभी यात्रा में, तो यात्रा में जाते हैं तो सारी चीजें, कॉस्मेटिक्स होगा वहाँ पर, ऑप्टिकल होंगे, हेड क्रेप जी, हर चीज होगी। तो ये कि हमें फिर ऐसा यात्रा में जब आप जा रहे हो भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो तो सिंपल होना चाहिए ना, तो यहाँ पर एक है संग्रह नहीं करना था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि खाली हाथ चले जाओ। आज के श्लोक में क्या बता रहे हैं, शुचो देशे, आप जाओ किधर, अकेले स्थान में जाओ तो अपनी मर्जी से कोई स्थान को चॉइस नहीं करो, जो जगह पर शुचो मतलब पवित्र, देशे मतलब भूमि में, अब आप जब योग साधना के लिए जा रहे हो तो उसके लिए पवित्र भूमि का चयन करो। पवित्र भूमि मतलब जैसे ऐसे तीर्थ स्थान होते हैं, जैसे अब यहाँ पर तो भारत में तो बहुत सारे हैं ना, जैसे मथुरा है, वृंदावन है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, मायापुर है, इतने सारे पवित्र स्थान है जहाँ पर, यहाँ पर पवित्र स्थान की शुचि उद्देश्य का क्यों बताया गया, क्योंकि पवित्र स्थान में पवित्र वाइब्रेशन होता है। अब जहाँ पर बहुत ज्यादा काम हो, कभी बॉम्बे में चले जाएंगे या फिर ना सिंगापुर में चले जाएंगे, दुबई में, यहाँ पर क्या होगा, आपको पवित्र वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। इसलिए शुचा उद्देश्य, जहाँ पर पवित्र लोग रहते हैं, जहाँ पर भक्त लोग रहते हैं, ऐसी जगहों पे जाना चाहिए योग अभ्यास के लिए। शुचा, स्वच्छ, अकेली जगह होनी चाहिए, एकांकी बोला पहले, लेकिन वो कौन सी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, साफ सुथरी पवित्र जगह होनी चाहिए, धाम में जाना चाहिए भगवान के। और शुचा उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठाप्य का मतलब होता है कि जब आप पवित्र स्थान में जाओ तो वहां पर बैठने के लिए एक जगह, एक मतलब ऐसा नहीं कभी उधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए, आप योगा योग साधना जब दिल करे, जैसे हम लोग कैसे जब करते हैं, थोड़ी देर है ना टीवी वाले रूम में बैठ गए, थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठ गए, थोड़ी देर गैलरी में बैठ गए, जब करते हैं नहीं, साधना करनी है तो स्थान भी ना नियुक्त होना चाहिए कि अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा हो कि नींद आ रही है तो थोड़ा वॉक करके कर लें, लेकिन यहाँ पर स्थान की बात की जा रही है कि जो आसन होता है ना उसकी वैल्यू बताई जा रही है कि स्थिरम आत्मनम आसनम, आत्मनम स्थिरम आसनम आत्मना आसनम आत्मना, जहां पर बैठने की जो जगह होगी ना वो अपना होना चाहिए। पहले बोला संग्रह नहीं करना, सामान ज्यादा नहीं लेके जाना, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि आसन जरूर होना चाहिए तुम्हारे पास। ऐसा नहीं है योग अभ्यास के लिए जा रहे हो, वहां पर चार योगी पहले से अभ्यास कर रहे हैं, किसी के भी आसन में बैठ गए, थोड़ा योग अभ्यास किया, फिर बोला हे अंकल ये मेरा आसन है दे दो वापस। तो अपना आसन लेकर जाना ताकि तुम्हें कोई उठाए नहीं, डिस्टर्ब नहीं करे, तुम आराम से अपनी साधना कर सको। आसन आत्मना, यहाँ पर आत्मना का मतलब होता है अपना होना चाहिए। पवित्र जगह पे जाओ और आसन अपना लेकर जाओ और वहां पर बैठो योग साधना के लिए। अब आसन के विषय में बता रहे हैं, देखो आसन की कितनी वैल्यू है, यहाँ पर भगवान ने पूरा एक श्लोक में बताया, नाति चित्तम नाति नीचम। अभी इतना ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा नीचे भी नहीं चाहिए। ऊपर होगा तो क्या होगा, दिमाग सही टिकेगा नहीं। बहुत ज्यादा ऊपर अभी हम ऐसे करेंगे एक बिल्डिंग जितना, अब देखो यहाँ पर हम बैठे ना फर्श पर, लेकिन अगर योग साधना के लिए एक बिल्डिंग जितना ऊपर सा बनाएंगे तो फिर क्या होगा, कहीं मैं गिर ना जाऊं। ध्यान लगा होगा कि मुझे अगर नींद आ जाएगी मैं गिर जाऊंगा, सर वर फूट जाएगा। तो इतना ऊपर भी नहीं होना चाहिए और ना ती नीचा, एकदम फर्श पे भी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फिर फर्श पे होगा तो फिर कोई कीड़े मकोड़े आएंगे और फिर ना कोई भी डिस्टर्ब करेगा ना, जैसे बिल्ली आ गई, चूहा आ गया, इस तरह। तो इतना ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इतना नीचे भी नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, शैलाजन कुशोत्तरम। शैलाजन का क्या मतलब होता है कि वो आसन जो है वो मुलायम होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि आप जब बैठो तो आपको डिस्टर्ब नहीं करे। आप जब योग साधना के लिए बैठ रहे हो तो एकदम मुलायम सा। और दूसरा उसको बोलते हैं मृगशाला, मृगशाला यानी हिरण की जो स्किन होती है ना, हिरण की खाल, उसको बिछाना चाहिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि हिरण की खाल क्यों बोला ना, वो इसलिए बोला है क्योंकि योगी योग स्थान योग अभ्यास करने के लिए जो जगह पे जाता है ना, तो वहां पर अब वो जाहिर सी बात है शहर से दूर होता है, एकाकी जगह होती है, जंगल होता है, तो वहां पर सांप इत्यादि आ सकते है ना, आप जब योग में साधना में लग गए। तो हिरण की खाल है उससे ऐसी गंध निकलती है, मतलब ऐसी स्मेल आती है उससे कि सांप जो है वो उससे दूर रहता है। तो फिर अब ऐसा नहीं योगी लगा हो योग में और अचानक सांप आ जाए और उसको मार डाले, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए हिरण की स्किन जो है वो चाहे इलाज है ना कुशोत्तरम, ताकि जो सांप है और जो इस तरह के जो छोटे छोटे कीड़े ना बड़े वाले वो उससे दूर रहे, सौपेरी वगैरह। तो इस इसलिए आप देखो आसन के विषय में बताया कि पवित्र स्थान में जाओ और अपना आसन बिछाओ। वो आसन ना बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो, सॉफ्ट हो ताकि आप उस पर आराम से बैठ सको, और ये मृगशाला हो ताकि आपको जानवर वगैरह परेशान ना करें। उसके बाद यहाँ पे बैठ के क्या करना है, तत्र एकाग्र मना, उसके बाद मन को एकाग्र करना है। और मन को एकाग्र, अब मन को एकाग्र करने के लिए भगवान ने यहाँ पर दो चीजें और बताई, कृत्वा यत चित इंद्रिया। अब एकाग्र मन करने के लिए आपको चित्त को और इंद्रियों को एकाग्र करना है पहले से। इंद्रिय क्रिया क्या है, चितेंद्रिय क्रिया। इंद्रिय क्रिया मतलब आप आंखों से बार बार देखो नहीं कि उधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। इंद्रिय मतलब जैसे हमारी कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां हैं, अगर वो एक जगह पर एकाग्र होंगी ना, जैसे भगवान ने भी पहले बताया था आदव तस्माद आदो इंद्रियाण आदो, कि इस तरह सबसे पहले क्या करना है, इंद्रियों को एकाग्र करना है, है ना। पहले इंद्रियों को, हाँ अब मुंह को बार बार ये परमिशन नहीं दो कि तुम जो भी खाना चाहो जाके खा लो, कान को भी इधर उधर सुना, इंद्रियों को वश में करना है। जो मंत्र आप जप कर रहे हो उसके ऊपर एकाग्र करना है, इंद्रियां वश होंगी। थोड़ी देर के बाद प्यास लगी, चलो योगी उठा है, बोले पानी पी के आता हूँ तो थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ, थोड़ा सा ये करते हैं, नहीं आप साधना पूरी करो ना, इंद्रियों को वश में करो। आंखों को भी कुछ देखने आगे बताएंगे कि आपको है ना नजर को ये नोज स्ट्रिप जो है ना उसके ऊपर टिकानी है, और ताकि इंद्रियां वश में हो, ठीक है, इंद्रियों वश में। फिर बोला मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय, मन को एकाग्र करने के लिए चित इंद्रिय। अब चित को जैसे मैंने आपको कल बताया था, चित क्या है, मन सूक्ष्म है और चित्त जो है वो उसका रिफ्लेक्शन है। चित्त जो है मन, अब कोई चीज है ना मन सोचता है तो चित उसके अंदर अटक जाता है। कैसे होता है, जैसे हम जैसे मैंने कल आपको टीवी की मिसाल दी थी कि एक व्यक्ति है वो बहुत कुछ देख सकता है, परंतु चेतना अगर टीवी जो है वो देख रहा है तो इंद्रियां क्या कर रही है, टीवी को देख रही है, ठीक है, और मन उसमें लग रहा है कि हाँ इसका किसी के ना डेथ हो जाती है, फिर चित्त जो है वो उसको फोकस करता है ना चित्त, परंतु चित्त अगर केंद्रित हो जाता है ना उसके ऊपर, तो फिर ना मन भाग सकता है ना इंद्रियां भाग सकती हैं, फिर उसी में उसको केंद्रित होना पड़ेगा। तो चित्त वो सूक्ष्म अंग है हमारे जिस्म का, जिसको हम वो आता भी नहीं है। देखो हम जब 11 अपने इंद्रियों के विषय में बताते हैं तो 10 इंद्रियां होती हैं और एक मन होता है, लेकिन चित्त वृत्ति होती है। योगी का क्या मतलब होता है, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग का मतलब होता है चित्त जो एक हर एक जगह पर फोकस होता रहता है मन के माध्यम से, तो उस चित्त को भगवान में फोकस करना है। ये चित्त का काम है फोकस होना। तो ये जो चित्त की बात, अभी चित्त वृत्ति निरोध, निरोध मतलब रोकना। वैसे चित्त की वृत्ति क्या है, चित्त का स्वभाव क्या है, भौतिक वस्तुओं में आकर्षित होना, ये चित्त का स्वभाव है। मन तो कोई भी चीज को है ना उसका स्वभाव नहीं है, जिधर चित्त लगेगा ना उधर मन लगेगा। तो चित्त जो है वो ज्यादातर भौतिक वस्तुओं में लगता है, लेकिन योगी को क्या करना है, पहले इंद्रिय की क्रियाओं को कंट्रोल करना है, फिर चित्त को कंट्रोल करना है कि नहीं तुम्हें, फिर मन खुद ही एकाग्र हो जाएगा, एक जगह पर टिकेगा। और इस तरह का उपवेश्यासन है, यानी कि फिर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से आसन पर उपविश बैठकर आसन के ऊपर युंजायते अभ्यास करो। आसन पे बैठकर मन इंद्रियों और चित्त की क्रियाओं को कंट्रोल करने का अभ्यास करना है। और युंज्याद योगम आत्मविशुद्धये, ये क्यों कर रहा है इतना सारा कार्यक्रम, योगम आत्मविशुद्धये, ये जो योग है उस करने का कारण क्या है कि आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सारा सिस्टम क्यों किया जा रहा है, कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए। जैसे अभी हम लोग मार्केट जाते हैं, वहां से आटा लिया, सब्जी ली, घी लिया, दाल लिया, सब इतना सारा लिया, घर पे आके मसाला बनाया, पीसा और ये सब बनाया, कुकिंग किया, और फिर उसके बाद है ना भगवान को सर्व किया, और फिर ये सब किया किस लिए, भगवान को सर्व करने के लिए। फिर भगवान को सर्व किया तो उसके बाद हमें प्रसाद मिला। तो वास्तव में हमें संतुष्ट होना था प्रसाद से, तो फिर ये सारा कार्यक्रम हमने किया। लेकिन यहाँ पर योगी के लिए ये सारा कार्यक्रम क्यों कर रहा है, आत्मा विशुद्ध है, क्योंकि आत्मा दूषित है। अभी संसार में आत्मा आ गई है प्रकृति की यमाणाए, तो प्रकृति के अंदर जो ये गुण है उनके साथ दूषित हो गई है और अपने वास्तविक स्वभाव को भूल गई है, इसलिए योग अभ्यास के द्वारा उसको शुद्ध किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया है कि यहाँ भगवान ने बता दिया है आत्मशुद्धि की ये क्रिया, लेकिन ये बहुत सबके लिए इतनी इजी नहीं है ना। सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं तो फिर उनके लिए ऐसा संभव नहीं है। वे योग की वास्तविक अभ्यास के लिए अभ्यास जो है हर किसी के लिए अनुपयुक्त है, लेकिन फिर भी अगर कोई कर भी रहा है योग अभ्यास, कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी जब उसके साथ तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, वो ये मन को एकाग्र नहीं कर रहा है, एक पॉइंट पर नहीं टिका पा रहा है और ये चित्त को फोकस नहीं कर पा रहा है भगवान के अंदर, तो फिर उसकी जो योग अभ्यास की इतनी सारी कृत्रिम विधियां हैं वो फिर फिजूल है ना। जब वो उसका गोल क्या है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए मन इंद्रियों और चित्त को एकाग्र करना है, लेकिन यदि वो ये सब कर रहा है लेकिन फिर भी उसका मन एकाग्र नहीं हो रहा है, तो फिर ध्यान का या अभ्यास करने का फायदा क्या है। मेन तो कारण क्या है कि आपको अपने मन को एकाग्र करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, तो फिर वो होगा ये ध्यान जो है ना। श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि कृते यध्यायते विष्णु, ये ध्यान जो है वो सत्युग की है ना बात है कि सत्युग में ध्यान किया जाता था। त्रेतायाम यज्ञ तो मुखे, त्रेता में यज्ञ किया जाता था, और द्वापुरे परिचर्यायाम, द्वापुर में विग्रह पूजा की जाती थी, और कलौ तत् हरि कीर्तन, कलौ कलयुग में भगवान के कीर्तन से भगवान को प्राप्त किया जाता है। वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक सिद्धि तो आत्मा शुद्ध है, आत्मा को पवित्र करना है, हृदय को एकाग्र करना है, चित्त को फोकस करना है, मन को एकाग्र करना है, किसके ऊपर, भगवान के ऊपर, और इसी से हमारी आत्मा शुद्धि होगी, इसी से परम सिद्धि प्राप्त होगी। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बृहन नारदीय पुराण में तो यहाँ तक कह दिया कि कलयुग में जहाँ पर लोग के पास इतना समय नहीं है, प्रायः अल्प आयुष्य सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, कि उनका भाग्य कम है। कि क्यों? क्योंकि उनको ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका संग प्राप्त नहीं होता है जिससे वो वास्तविक विधि सीख सके, है ना, क्या विधि है वो नहीं सीख सकते। उनकी बुद्धि इतनी कम है कि यदि उनको शास्त्र में वो पढ़ते हैं तो उसका सही तरह से समझ में भी नहीं आता है कि यहाँ पर भगवान कह क्या रहे हैं और हमें करना क्या है, और इस तरह से क्योंकि वो हमेशा व्यग्र रहते हैं, बेचैन रहते हैं, तो ये योग अभ्यास उनके लिए नहीं है। कलयुग में क्या करना है, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये बृहन नारदीय पुराण का श्लोक, हमेशा चैतन्य महाप्रभु बताते थे हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यत्र। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का जप करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, कदापि नहीं है। भगवत प्राप्ति करने का सबसे सरल, सुगम और बहुत ही अच्छा उपाय है भगवान ने हमें दिया है। कलयुग के प्राणी हैं हम, तो हमें क्या करना चाहिए, यही, उससे भी यही रिजल्ट प्राप्त होने वाला है, क्या, आत्मशुद्ध है। क्यों, चैतन्य महाप्रभु ने बताया चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त को शुद्ध करना है ना, तो चित्त को, चित्त का जो दर्पण है वो मलिन है, और उसको शुद्ध करने के लिए क्या करना है, हरिनाम संकीर्तनम, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। इतना सरल है और इतना स्वादिष्ट है, भगवान की कथाओं को श्रवण करो, भगवान के पवित्र नाम का जप करो और इसी से परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा। हरि बोल।